उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्ति के दो विभाग, एक अपरा एक परा। अपरा भक्ति तो संसार में रहते हुए जो अनेक बातों के लिए परमात्मा की शक्ति का आह्वान करते हैं, अपरा। पराभक्ति जिसमें कुछ रहा ही नहीं स्वार्थ, केवल शुद्ध प्रेम के अलावा, वो पराभक्ति पराकाष्ठा है मानव विकास की। ज्ञान के बाद, वो ज्ञान के बाद होती है पराभक्ति। पराभक्ति में तो एक प्रकार से भगवान ही उस शरीर में विराजमान होते हैं। अच्छा, और उसी से ये 55वें में कहा है, उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ये पराभक्ति से होता है। ये 56वां, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चित्त से संपूर्ण का कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे प्रायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। 58वें में, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। यहाँ आकर के स्वतंत्रता दे दी, गुह्य से भी गुह्य मैंने तुझे कह दिया है, तो अब मैंने तो जो कहना था कह दिया, अब जो तेरी इच्छा हो सो कर। भगवान ने ये स्वतंत्रता दे दी अर्जुन को यहाँ आकर के। अब इस स्वतंत्रता को देने के पश्चात जो सबसे बड़ी घटना मानव शरीर में हो सकती है, मानव मन में, हृदय में, वो उसके अंदर घट गई। और वो ये घट गई कि कुछ उत्तर नहीं दिया उसने। भगवान ने तो कहा था यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा है सो कर, कोई उत्तर नहीं दिया, चुप हो गया। अब उस चुप्पी में तो अनेक शास्त्र छिपे हुए हैं। इन्होंने मुझे छोड़ दिया क्या, जो तेरी मर्जी आए सो कर, या जो बताना था वो बता चुके क्या, या ये तो कह चुके हैं सब कुछ यही है, पहले ये कह चुके हैं सब कराता भी मैं ही हूं, हर बात कारण भी मैं ही हूं, कार्य भी मैं ही हूं, कॉज एंड इफेक्ट सब मैं ही हूं, सब यही हूं, तो मैं क्या करूं। अब यूं कहते जो तेरी मर्जी आए सो कर, मैं क्या करूं जब हो ही आप। अनेक प्रकार की बातें घटित होकर के चुप हो गया। अब वो चुप हो गया बस इस चुप्पी के कारण से, अच्छा भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, फिर अब पात्र बन गया, पात्र बन गया सबसे गुह्य बात बताने के लिए, आखिरी अभी रखी हुई थी आखिर में। पात्र हो तभी तो दी जाती है, बिना पात्र के कैसे दी जाए। लेकिन उसने हो गया पात्र हो गया, तो जब वो चुप हो गया तो फिर 64 में कहते हैं, सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन, सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तो फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। प्रेम में कही जाती है भाई आखिरी बात, प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। और अब ये दो श्लोक हैं उपदेश के अंतिम 65वें में, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मुझे नमस्कार कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रेम में सारी मर्यादाएं ब्रह्म की, परमात्मा की और जीव की टूट जाती हैं। टूट गए। अरे कहने लगे जब तू मेरा ही है तो झंझट में क्यों पड़ रहा है भाई, हैं? कहने तो बात सिद्ध कर दी। और आखिरी जो है उपदेश का वो श्लोक 66वां, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये बात कह दी और इसके बाद में तुरंत ही एक बात अब यूं कह देते हैं कि भाई ये जो है परम गुह्य बात तो बतलाई, लेकिन ये जो ज्ञान है सबके लिए संभव नहीं है, देना भी नहीं, तो इसलिए क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दी 67वें में कि कौन इसके पात्र हैं। कहते हैं यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले अतपस्वी की बात कही है। अतपस्वी कौन होता है? जो कर्तव्य कर्म नहीं करता। तप कहते हैं कर्तव्य कर्म करने को। अब गीता में तप के अर्थ है कर्तव्य कर्म करना, वो पानी वानी में खड़ा होना और वो सब अग्नि जलाना और तपना, ये सब गीता में तामसिक है, वो सब बातें। गीता का तप है कर्तव्य कर्म। जो कर्तव्य कर्म नहीं करता उसको नहीं कहना भाई, कर्तव्य कर्म ही नहीं करता, ड्यूटी नहीं करता, उसे क्या बताना ही सब। अच्छा, यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए। कहीं से पकड़ करके उपदेश सुन ले मेरा, ऐसे नहीं, बहुत चाहते हैं उपदेश देना, उसको नहीं कहना चाहिए। और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। अब जो मानता ही नहीं भगवान को भगवान रूप में, 68वें में मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा तो वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। सुनने से भी कल्याण होगा, भले ही ज्यादा समझ में न आया और सुना तो भी बहुत बड़ी बात बनेगी। और फिर 72वें में, हे प्रथानंदन क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना, और हे धनंजय क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ। आखिरी टेस्ट गुरु ने, कहने लगे बता भाई इतनी लंबी चाड़ी कथा हुई, कुछ बात को समझा तू। अब वो उत्तर देता है और उत्तर दे करके वो डिस्टिंक्शन मार्क्स से भी ऊपर पास हुआ एकदम, क्योंकि उसका उत्तर ही ऐसा है। वो कहता है अर्जुन बोले हे अच्युत, पहले ही अच्युत कह दिया, आपका पतन नहीं होता, जिस पर आपकी कृपा होगी उसका भी नहीं होगा। हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। ओहो याद आ गया, भ्रम में पड़ा हुआ था, मुझे बहुत सब याद आ गई बात पूरी। अब इस याद आने के तौर से बहुत लगाए जा सकते हैं। याद आ गया मैं शरीर नहीं हूं, चैतन्य आत्मा ही हूं। याद आ गया ये परमात्मा से बात हो रही है, भगवान है ये, जो पहले कई बार करता था अरे कृष्ण अरे गौर ग्वाले आदि, वो सब मूर्खता की बातें थी। याद आ गया पहले जन्मों की बात याद आ गई नर नारायण के रूप में। याद आ गया क्या मुझे करना है, क्या अनेक बातें याद आ गया। मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। स्मृति काहे की होती है? पहले जाने हुए की। स्मृति सदा ही जो पहले जाना हुआ है उसकी होती है, अर्थात सदा से ही चैतन्य हूं, सदा से ही मुक्त हूं, सदा से ही आपका अंश हूं, ये भूल गया था। इतनी बात होनी है बस तुम्हारे साथ, कहीं से कुछ लाना वाना नहीं है, सब तैयार है, बात अंदर याद ही आनी और कुछ नहीं होना, सभी उनका अंश है। तो याद ही आती है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं, अब कोई संदेह नहीं रहा और स्थित हूं अपने आप में पूरी तरह से। और आखिरी बात कहते हैं अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब ये बतलाओ करना क्या है। ये बातचीत तो बहुत होली घंटों से, महाराज अब ये बदलाव करूं क्या। अच्छा अब संजय जी कहते हैं, संजय जी कहते हैं, संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा तथा नंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। व्यास जी महाराज गुरु थे संजय के, उन्होंने शक्ति दे दी थी उसको, ले भाई तू देखना करना है। 76वां, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 77वां, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और ये अंतिम श्लोक संजय की अद्भुत बुद्धि का परिचय देता है और इसमें किसी रूप में सारे वेद शास्त्रों का सार समा गया संजय के द्वारा कहे हुए इस अंतिम श्लोक में। संजय कहते हैं, इसे संस्कृत में पढ़ देता हूँ, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। श्री विजय विभूति और अचल नीति, इनमें सारे संसार की, ब्रह्मांड की सारी संपदाएं, सारी सामर्थ, सारा ज्ञान, सारा सौंदर्य, सब कुछ इन्हीं में समाया हुआ है। ये सब प्राप्त हो जाती हैं किसको, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं। अर्थात श्री कृष्ण तो विवेक रूप में बैठे हैं अंदर, और तुम अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए गांडीव धारण कर लो, अर्थात जो भी काम मिला हुआ है उस काम को उनका स्मरण करके अंदर करते रहो, और जब उनके स्मरण के साथ कार्य करना है और किया जाना है, असफलता जैसी बात का प्रश्न ही नहीं रहता। उदासीनता, मुंह लटकाए हुए हैं, मर गए, ये हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ है, ब्रह्म में पड़े हुए हो, आनंद की जगह है यहाँ, उनका नाम लो और कर्म करो और उत्साह उमंग के साथ इस भूमंडल पर विचरण करो अंतिम सांस तक। ये गीता शास्त्र इस प्रकार का है, इस बात के लिए है, ये मुंह लटकाने के लिए नहीं है। इस तरह का बैठे हैं माथे पे हाथ रखे हुए, अरे क्या कौन क्या हो गया, गीता शास्त्र शक्ति देता है। इस प्रकार की शक्ति के नर से नारायण का अनुभव होने के बाद नारायण का एक रूप होकर के उनमें ही उनके प्रेम में विलीन हो जाना। हाँ, तो आखिर में ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशो अध्यायः।